हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव ने मेहर से शादी करने का फैसला जल्दबाजी में लिया और मेहर को ही सारी तैयारी करने के लिए कह दिया था। वो युग को अपने फैसले के बारे में बता भी नहीं पा रहा था। इसी कश्मकश में ध्रुव याशी के साथ उसके प्लेरूम में बैठा हुआ था, जबकि उसका पूरा ध्यान इस बात पर लगा हुआ था कि वो युग और कृषा से इस बारे में किस तरह बात करे। इसी बीच युग और कृषा को सारा के जरिए ध्रुव की शादी के बारे में पता चला। वो काफी गुस्सा हो गया था और बात करने के लिए ध्रुव के पास पहुंचा। कृषा उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आई। जैसे ही प्लेरूम का दरवाजा खुला, ध्रुव ने देखा युग काफी गुस्से में उसे घूर कर देख रहा था। वो समझ सकता था कि युग के गुस्से का कारण वही है, तभी वो इस तरह उसके पास आया है। कुछ ही देर में कृषा भी वहां पहुंच गई थी, लेकिन दोनों बिल्कुल शांत थे और उसकी एकमात्र वजह याशी थी, जो इस वक्त ध्रुव की गोद में बैठी हुई थी। वहीं युग को अपने सामने देखकर याशी जल्दी से ध्रुव की गोद से उतरी और दौड़ते हुए उसके पैरों से चिपक गई। वो युग की तरफ देखकर बोली, अच्छा हुआ डैड आप फ्री हो गए, भाई को देखिए ना, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ध्रुव भी उठकर खड़ा हो गया था और उसकी नजरें झुकी हुई थीं। याशी के पैदा होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ होगा जो युग ने उसकी बात का ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा सिर्फ ध्रुव की वजह से हो रहा था। इस वक्त युग का मूड काफी खराब था और वो किसी भी तरह से याशी के साथ रूडली बात नहीं करना चाहता था। युग ने कृषा की तरफ देखा और धीमी सख्त आवाज में कहा, कृष यश को लेकर जाओ। लेकिन युग, कृषा ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन तभी युग ने याशी को अपनी गोद में उठाकर कृषा को पकड़ा दिया। कृषा को कुछ कहने का मौका नहीं मिला और युग ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। युग को बाहर से याशी की आवाज आ रही थी, मॉम डैड को क्या हुआ, उनका मूड अपसेट है क्या, वो मुझसे नाराज है क्या जो उन्होंने मुझसे बात नहीं की, मैं तो उनकी सारी बातें मानती हूँ, फिर वो मुझसे गुस्सा क्यों हो गए, याशी ने मायूसी से कहा। उसकी बातें सुनकर युग के गुस्से में मुठ्ठियां कस गईं। वहीं कृषा ने उसे समझाते हुए कहा, वो तुमसे नाराज नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं, बस उन्हें भाई से कुछ जरूरी बात करनी है और बड़ों के बातों के बीच बच्चों का होना सही नहीं है, बस इसीलिए भेज दिया। आप सच बोल रही हो ना मॉम, याशी ने दोबारा पूछा। कृषा ने हाँ में सिर हिलाया और उसके गाल पर किस करके कहा, चलो आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट शेक बनाकर देती हूँ। कृषा वहीं पर रुककर युग को शांत करना चाहती थी, उन दोनों के झगड़े को वही शांत कर सकती थी, लेकिन इस वक्त याशी के चलते वो भी मजबूर हो गई थी। मजबूरन कृषा को वहां से हटना ही पड़ा। वहीं जब उनकी आवाज आनी बंद हो गई, तब युग ने अपने कदम ध्रुव की तरफ बढ़ाए। ध्रुव ने युग की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं बस बताने के लिए आ ही रहा था डैड। रियली, चलो तुम्हें याद तो था कि हम दोनों को भी बताना है, वरना मुझे लगा था कि तुम हमें इन्वाइट तक नहीं करने वाले हो, जैसे अपनी सगाई में भी नहीं किया था, युग ने सार्कास्टिकली कहा। सब कुछ काफी जल्दबाजी में डिसाइड किया था, मैंने बस मेहर को एक कॉल किया था, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह मुंबई पहुंच जाएगी, ध्रुव ने अपनी सफाई में कहा। बहाने बनाना बंद करो ध्रुव राणा, युग ने तेज आवाज में कहा, दूसरों को धोखा देना तक ठीक है, लेकिन खुद को धोखा देना मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया था, मेरी कृष तो कभी ऐसा सिखा ही नहीं सकती, फिर किससे सीखा है तुमने ये। ट्रस्ट मी डैड, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद दिस मैरिज, ध्रुव ने जवाब दिया। युग ध्रुव के पास आया और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया, वो उससे आई कॉन्टैक्ट करने से बच रहा था। युग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि यू आर हैप्पी विद दिस मैरिज। मेरे लिए मायने नहीं रखती है ये शादी, मेरा मकसद मायने रखता है, जिससे मैं अब और नहीं भागना चाहता हूँ। आपने मुझे काफी टाइम दे दिया, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए और टाइम, मुझे जल्द से जल्द माफिया की दुनिया में खुद को साबित करना है, ध्रुव ने आंखों में देखकर कहा। वो कभी युग की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल भी नहीं सकता था। चलो मैं तुम्हें कहता हूँ कि वो तीन पड़ाव अभी भी हमारे हो सकते हैं, इसके लिए तुम्हें मेहर रायचंद से शादी करने की जरूरत नहीं है, तो क्या फिर भी तुम ये शादी करना चाहोगे, युग बोला। हाँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ध्रुव ने नजरें झुकाकर कहा, जिस पर युग जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये खतरनाक हंसी देखकर कृषा होती तो वो डर जाती, लेकिन ध्रुव बिल्कुल खामोश हो गया था। अपने इमोशन से भागने के लिए तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो, बहुत अच्छा तरीका चुना है तुमने अपनी बर्बादी का, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कभी इस तमाशे में शामिल नहीं होने वाला हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने दिल की बात सीधे सीधे कहो। मैं अभी प्रतीक रायचंद को कॉल कर रहा हूँ, तुम इस शादी के लिए मना करने वाले हो, मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो और मैं तुम्हें जानबूझकर खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा, युग ने सख्ती से कहा। युग ने अपना मोबाइल निकाला ही था कि ध्रुव ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया था। ध्रुव ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं डैड, जो डिसाइड हुआ है वही होगा, इसी महीने मेरी और मेहर की शादी होगी और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली इसमें शामिल हो। बोलते हुए ध्रुव की आंखें भी बेहद सर्द थीं, लेकिन उसमें हल्की नमी थी। इस वक्त योग और ध्रुव एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। दोनों की ही पलकें बिल्कुल नहीं झपकी थीं। योग ने ध्रुव का हाथ झटका और फिर सर्द आवाज में कहा, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जानते हो ना, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब तुम तीनों में से किसी को तकलीफ होती है। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो बेबी डेविल, और ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, और मेरी वजह से आप क्यों हर्ट हो रहे हो? सब लोग शादी करते हैं, आपने भी की थी, तो मैं भी करने जा रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा। योग ने भी आगे बहस नहीं की, वो बिना कुछ बोले वहां से जा रहा था। तभी ध्रुव ने पीछे से कहा, डैड, मैंने कहा मैं अपनी पूरी फैमिली को शादी में चाहता हूँ, तो आप और याशी भी शादी में शामिल होंगे। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हमें सबको याशी की एग्जिस्टेंस के बारे में बता देना चाहिए। तुम क्या चाहते हो ध्रुव राणा? तुम्हारी इस शादी के तमाशे के चक्कर में मैं अपनी बेटी की जान दांव पर लगा दूं? मैं क्रिश को कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं और मेरी बेटी किसी भी तमाशे में शामिल नहीं होंगे। युग ने बिना ध्रुव की तरफ देखे कहा और वहां से चला गया था। युग और ध्रुव के बीच में पहले भी बहस होती थी, लेकिन इस बार युग का रवैया साफ बता रहा था कि वो ध्रुव से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसका कहना भी सही था, ध्रुव अपने इमोशंस को दबाने के चक्कर में ये शादी करके खुद को हर्ट कर रहा था, और उसे तकलीफ में देखकर युग को उससे भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। युग के जाते ही ध्रुव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, अब क्रिश ही इन्हें समझ सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, डैड को आखिर क्या हो गया है? माफिया के साथों पड़ाव पार करने से उन्होंने भी माफिया प्रिंसेस को किडनैप किया, शादी करने की कोशिश की। जब मेरी बारी आ गई तो बीच में इमोशंस, खुशियां और बाकी चीज कहाँ आ गई?
वही ध्रुव के कमरे से बाहर निकलते ही युग ने मन ही मन कहा, मेरे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हो बेबी डेविल, लेकिन एक बात भूल रहे हो कि मुझे समझने के लिए कोई नहीं था सिवाय हरलीन बुआ के। शब्द की मैंने कभी नहीं सुनी, मेरे आगे किसी की नहीं चलती थी जो मुझे ये बता सके कि मकसद और प्यार में से प्यार को चुनना चाहिए। किस्मत अच्छी थी जो क्रिश माफिया प्रिंसेस थी, वरना मैं खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर देता। लगाओ तुम्हें जितने भी महफिलें लगानी हैं, लेकिन होगा वही जो युग राणा चाहता है। और भूल गए हो तुम, ये एटीट्यूड तुम्हें मुझसे ही जीन्स में मिला है। मैं देखता हूँ मेरे होते हुए तुम उस लड़की से आखिर शादी कैसे कर पाते हो। मंडप से मैं से खींच कर तुम्हें बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी डेविल नहीं। युग और ध्रुव के बीच जो खींचातानी चल रही थी उससे कृषा अनजान नहीं थी। अंदर कमरे में क्या हुआ था वो इस बारे में नहीं जानती थी। जैसे ही युग बाहर निकला उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। वो जानता था कि उसे याशी को भी जवाब देना है। याशी को देखते ही युग उसके पास आया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आई होप क्रिश तुम्हारे टेस्ट पर्ट्स के साथ ज्यादा अन्याय नहीं किया होगा। नहीं, शेक इतना भी बुरा नहीं था डैड, याशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और युग के गले लग गई थी। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, अच्छा डैड, मुझे मॉम ने बताया कि भाई की शादी हो रही है, कितना मजा आएगा ना? याशी का दिल बहलाने के लिए कृषा ने उसे ध्रुव की शादी के बारे में बता दिया था। ध्रुव युग के पीछे ही खड़ा हुआ था। याशी के मुंह से ध्रुव की शादी की बात सुनकर युग के चेहरे के एक्सप्रेशंस इंटेंस होने लगे। उसने घूर कर कृषा की तरफ देखा तो उसने धीरे से उसे सॉरी कहा। युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और याशी से कहा, तुम्हारी मॉम भी टाइम पास के लिए कई बार कुछ भी बोल देती है। मैंने डिसाइड किया है कि अगले एक महीने तक हम दोनों साथ में यहीं पर रहेंगे, और फिर तुम्हारी सारी शिकायतें मिट जाएंगी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। लेकिन डैड, आपको वापस इंडिया जाना था और मुझे अपने स्कूल, फिर कैसे होगा? याशी ने मासूमियत से पूछा। अपने स्कूल की परवाह मत करो, बाकी जिन्हें इंडिया जाना है वो जा सकते हैं। मुझे तो अपनी याशी के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो कि किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है। युग ने याशी के फोरहेड पर किस किया और फिर उसे वहां से गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर चला गया। युग की बातों से कृषा समझ गई थी कि युग और ध्रुव के बीच में अच्छी खासी बहस हुई होगी। वो ध्रुव से नाराज था, इतने में ध्रुव भी उसके पास आ गया। क्रिश, प्लीज डैड को समझाइए, वो बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी ना होता है कि आप दोनों मेरी शादी में नहीं आओगे। मैं शादी नहीं करूंगा अगर आप दोनों नहीं आओगे, ध्रुव ने प्लीडिंग वे में कहा। अगर अब उसने कुछ डिसाइड किया है और वो किसी जिद पर अड़ा है तो मैं भी उसे नहीं समझा पाऊंगी। आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में जो युग तुमसे इतना गुस्सा हो गया? कृषा ने पूछा। कुछ नहीं, बस उन्हें भी अब अचानक से मेहर पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी ना करूं। मुझे उससे शादी करनी है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। क्या आप भी मेरी खुशियों में शामिल नहीं होंगी क्रिश? ध्रुव ने कृषा की तरफ देखकर पूछा। ध्रुव जानता था कि अगर कृषा युग को मनाएगी तो वो आ जाएगा और उसका गुस्सा भी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। वैसे तो मैं युग के खिलाफ कुछ भी करना पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ बात तुम्हारी है, डोंट वरी, वो मान जाएगा। तुम्हें शॉपिंग के लिए चलना है या फिर इंडिया जाकर भी सब करोगे? कृषा ने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव का मूड ऑफ हो। मैंने सारा काम मेहर के ऊपर छोड़ दिया है, मैंने सोचा है कि परसों तक इंडिया चलते हैं, ध्रुव ने जवाब दिया। कृष्णा ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और फिर वो युग के पास बात करने के लिए आ चुकी थी। वो कमरे में पहुंची तब तक याशी सो चुकी थी, तो कृष्णा के पास बात करने का मौका भी था। याशी को बेड पर लेटने के बाद कृष्णा ने युग से कहा, क्या सच में तुम अपने बेबी डेविल की शादी में नहीं आओगे? और तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ ध्रुव उस लड़की से शादी कर पाएगा, खासकर तब जब वो उससे प्यार नहीं करता? युग ने भौहें उठाकर कहा, उसने कुछ सोचकर ही डिसीजन लिया होगा। तुम हमेशा उसका साथ देते हो, तो इस बार उसके खिलाफ क्यों हो रहे हो? कृष्णा ने हैरानी जताते हुए पूछा। मैं हमेशा उसका साथ नहीं देता हूँ कृष, जब वो गलत होता है तब मैंने बहुत बार उसे रोका भी है। दूसरी बात, तुम कब से इस शादी में इंटरेस्ट लेने लगी? तुम्हें तो खुद को वो लड़की पसंद नहीं थी। सगाई के दिन इतना गुस्सा हो गई थी तुम कि खुद का एक्सीडेंट तक करवा लिया था। युग बोला, मैं ऐसी इमैच्योर हरकतें करती हूँ तो समझ आता है, लेकिन तुम भी मेरे साथ शामिल हो गए। ठीक है, वो मेरा सडन रिएक्शन था, पर मैं कोई विलन थोड़ी ना हूँ जो अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं करूंगी। खैर छोड़ो, हमने परसों इंडिया जाने का सोचा है और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। आखिर तुम लड़के के डैड हो तो कुछ रस्में तुम्हें भी करनी होगी, तुम्हारा साथ होना जरूरी है। कृष्णा ने बातों ही बातों में युग को मनाने की कोशिश की। कृष्णा की कोशिशें देखकर युग के चेहरे में सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने उसी अंदाज में कहा, वैसे कभी सोचा नहीं था ये कहूंगा, पर बेवजह अरेंजमेंट्स पर खर्चा मत करना ज्यादा, ये शादी मेरे रहते नहीं होने वाली। सो अगर सच में शादी करनी है तो मुझे इन्वाइट ना करने में ही भलाई है। उसकी बातें सुनकर कृष्णा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो जल्दी से बोली, हे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए और वहां से याशी को गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाने लगा। वहीं कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि युग ने कुछ डिसाइड किया था तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लड़कों की एक्स उनकी शादी तुड़वाती है, यहाँ तो बाप ही दुश्मन बन गया है। युग की जिद टॉप लेवल होती है, मजा आएगा देखने में। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।